ओम शांति। आज 31 अगस्त 2016 तो कुमार जीवन की जो यात्रा थी, हमने कुमार जीवन के 84 दिन 84 एपिसोड 84 धारावाहिक 84 की ये श्रृंखला आज पूरी हो रही है। तो ये केवल कुमार जीवन नहीं था, परंतु कुमारी जीवन, कुमार जीवन या कहो ब्राह्मण जीवन, सब कुछ इसमें समाहित था। ज्ञान की जो अथाह संपदा बाबा ने हम सभी को दी है, ज्ञान का एक एक शब्द इतना गहरा है। इन 84 दिनों में हम सभी ने बाबा के इन महावाक्यों को पढ़ा, सुना, इस पर चिंतन किया, मनन किया। जो चिंतन किया वो भी कोई साधारण चिंतन नहीं था, क्योंकि वो ईश्वरीय चिंतन था और ईश्वरीय महावाक्यों पर चिंतन था। और क्योंकि वो चिंतन मधुबन की इस पावन भूमि पर किया गया था, इसके लिए ये सभी बातें महान है। 84 कई सारे संतों को ईसाई धर्म में ऐसे ऐसे साक्षात्कार हुए हैं कि जिन साक्षात्कार में उन्होंने पाया है कि जीसस क्राइस्ट को 84 फरिश्तों ने उनकी सेवा की थी। आफ्टर द पीरियड ऑफ टेम्पटेशन, जो 40 दिन का उसके जीवन में मौन है, जो 40 दिन में वो 40 दिन तक वो भटक रहे हैं अकेले, तो उसके बाद 84 फरिश्ते आए और उनकी सेवा की। उसी तरह एक दूसरा उदाहरण भी है 84 का, वो है नोहा की जहाज, जो बाइबल का ये उदाहरण है पुराना करार ओल्ड टेस्टामेंट में, कि जो भविष्यवाणी हुई थी कि सारा संसार पानी में डूब जाएगा, 40 दिन तक लगातार बारिश होगी, और उस नोहा जिसको प्रोफेट कहा जाता है, उसे ये आदेश था। जैसे कि भारत में भी, भारत के शास्त्रों में भी इस तरह का गायन है, भगवान का मत्स्य अवतार, कि भगवान मत्स्य के रूप में आए, उस जहाज को लेके गए विनाश का वो साक्षात्कार। तो वैसा ही बाइबल में भी नोहा जो है वो एक बहुत बड़ी जहाज बनाता है, और उसमें हर किस्म का प्राणी, व्यक्ति सब उसमें होते हैं, पशु, पौधा। तो उसमें भी गायन है कि 84 व्यक्ति उस जहाज में थे, ऐसी मान्यताएं हैं। शास्त्रों में कुछ और लिखा है, परंतु मान्यताएं हैं। तो 84 दिन की ये यात्रा जो हमने पूरी की कुमार जीवन की, ये किताब केवल किताब नहीं है, है तो बहुत छोटी सी किताब, परंतु एक एक वाक्य ईश्वरीय महावाक्य है, एक एक लाइन अपने आप में एक बहुत ही गूढ़ अर्थ लिए है। भागवत में दिखाया है धुंधुकारी, जिसको बाबा मुरलियों में भी याद करते हैं, 7 दिन तक वो भागवत कथा सुनता है एक खंभे में प्रवेश कर, और 7वें दिन वो मुक्त हो जाता है। 7 दिन के बाद किसको सुनने के लिए, किसको सुनकर, भागवत को सुनकर। तो केवल वह भागवत, ये तो सच्ची सच्ची भागवत है जो भगवान सुना रहे हैं, वो केवल 7 दिन। तो कितना ध्यान से उसने सुना होगा, जो उसका भाई गोकर्ण सुनाता है, तो वो धुंधुकारी मुक्त हो जाता है। एक एक दिन एक एक गांठ खुलती जाती है। इसके लिए शास्त्रों में 7 दिन तक भागवत कथा होती है, कहीं कहीं 9 दिन भी होती है, पर 7 दिन होती है। तो 7 दिन तक सुना और आत्मा मुक्त हो गई। तो हमने भी सुनाया और सुनी 84 दिन। तो ये 84 दिवस, ये 84 दिन जो यात्रा हमने की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा थी। ये केवल कुमार जीवन की यात्रा नहीं थी, परंतु ब्राह्मण जीवन में क्या करना है, ब्राह्मण जीवन के क्या सिद्धांत, क्या नियम, क्या मर्यादाएं, क्या कौन सी बातें होनी चाहिए, वो सभी विस्तार में बाबा ने कही है। ज्ञान की ये अथाह संपदा है, इतिहास में दिखाया है। सिकंदरिया की का ग्रंथालय, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में जो है, इजिप्ट की जो लाइब्रेरी है, उसको जलाया गया था। खलीफा जब आया उसने उसको जलाया। 300 वर्ष जीसस क्राइस्ट से पहले, ईसा के 300 वर्ष पहले उसका निर्माण हुआ और ईसा के 30 वर्ष पूर्व तक वो चली। दो मान्यताएं हैं, एक तो जूलियस सीजर ने उसको जलाया, या फिर जो सबसे प्रसिद्ध मान्यता है वो है खलीफा उमर खलीफा आया और उसने उस लाइब्रेरी को, उस ग्रंथालय को जलाया। क्यों जलाया? वो ग्रंथालय ऐसा था कि 6 मास तक जलता रहा। कितनी किताबें होगी उसमें, कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है इस धरती पर जो कि उस लाइब्रेरी में नहीं था। तक्षशिला और नालंदा की लाइब्रेरी से भी कई गुना बड़ी वो लाइब्रेरी थी। उसको उमर खलीफा उमर ने जलाया। क्यों जलाया? बहुत प्रसिद्ध उसके वचन है जो सब जगह लिखे हुए हैं। उसने पूछा क्या इसमें जो किताबें हैं, उसने कब जलाया? 647 एडी, 647 क्राइस्ट के बाद। लाइब्रेरी का जन्म है 300 वर्ष पूर्व ईसा के। दो मान्यता, एक तो 30 वर्ष पूर्व ईसा के जो कि जूलियस सीजर ने जलाया, पर उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध मान्यता है 647, 647 क्राइस्ट के बाद उमर खलीफा ने चलाया। आकर उसने पूछा कि यहां जो किताबें हैं, क्या वो सारी की सारी किताबों में वही ज्ञान है जो कि कुरान में है? और यदि हां वही है तो इन इसमें से किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक किताब काफी है। फिर ये बाकी किताबें क्यों? वाई दिस सुपरफ्लस? जला दिया। दूसरा उसका प्रश्न था, क्या इनमें वो किताबें वो कहती है जो कुरान के विरोध में है? यदि हां तो इनकी किसी की आवश्यकता नहीं। तो ये दोनों ही रीति से उसने जला दिया। 6 मास तक ये लाइब्रेरी जलती रही, द लाइब्रेरी ऑफ द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। कितने ही उसमें गार्डन्स थे, कितने ही उसके बिल्डिंग्स थे, ऐसी लाइब्रेरी की जो आज तक संसार में कभी नहीं हुई। और उसने जितना ज्ञान की संपदा थी सब की सब चला दिया उसने। 6 मास तक जलती रही, मतलब कितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी वो। हम बात कर रहे हैं ज्ञान की, और आज तक इतिहासकार बड़े दुखी है कि वो सोचते हैं वो सारी लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें थी, सब चल गई, सारा ज्ञान लुप्त हो गया। एक दूसरा उदाहरण है नालंदा, मगध की जो लाइब्रेरी थी, मगध की, मगध जो कि वर्तमान में बिहार और आसपास के क्षेत्र है, नालंदा की लाइब्रेरी भी थी जो कि 4th और 5th शताब्दी में लगभग शुरू हुई। चंद्रगुप्त मौर्य चला गया, उसके बाद में जो वंश आए, गुप्त वंश और हर्षवर्धन, उन्होंने, उनके काल में वो लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। वो लाइब्रेरी भी इतनी बड़ी थी कि उसको भी जलाया गया। बख्तियार खिलजी जब आया 1193 AD, चालू हुई 5th और 6th शताब्दी में, लगभग चली 1193 तक, जबकि बख्तियार खिलजी आया और उसने उस लाइब्रेरी को जला दिया। 3 मास तक ये लाइब्रेरी भी जलती रही। तक्षशिला के बाद सबसे बड़ी अगर कोई ग्रंथालय होगा तो नालंदा का था। ये दो ऐसी लाइब्रेरी है सिकंदरिया और नालंदा, जिनको इस्लाम के शासकों ने आकर जलाया। क्यों जलाया? कारण एक ही। यहां प्रश्न था कि एक है किताबें, एक है शास्त्र, इसको समझने का है। किताब किसे कहते हैं और शास्त्र किसे कहते हैं। जैसे ही कोई किताब शास्त्र बन जाती है, सारी झंझटें अड़चन चालू हो जाती है। जब तक वो किताब है तब तक ठीक है। अगर कोई कहे कि कुरान किताब है तो वो लाइब्रेरी में रहेगी, परंतु यदि कोई कहता है कुरान शास्त्र है तो वो एकमात्र शास्त्र है और फिर बाकी सारे जो किताब है शास्त्र है सब झूठे हो जाते हैं। उसी तरह अगर कोई कहता है कि वेद शास्त्र है किताब नहीं है तो सारी झंझटें चालू हो जाती और सारी लड़ाई सारे झगड़े संसार में हुए इन शास्त्रों के वजह से हुए। अगर वो उमर खलीफ अगर कहता कि कुरान केवल एक किताब है तो बाकी भी किताबें जलाने का कोई सवाल ही नहीं, पर वो कहता है नहीं वो शास्त्र ईश्वरीय वचन है देववाणी है तो बाकी सारे देववाणी नहीं है, फिर बाकी सारी की जरूरत ही नहीं है फिर और लड़ाई। तो ये बातें हम इसलिए सुना रहे हैं कि जब भी परम सत्य का आविर्भाव होता है संसार में, जन्म होता है, किताबों में वो लिखा जाता है, परंतु उन किताबों को ही पकड़ ना लेना। अगर कोई कहे कि ये ही शास्त्र है तो झगड़े चालू हो जाएंगे, फिर इसको किताब ही रहने दो। बाबा ने भी क्या कहा था, सब किताबों को क्या कर दो जो मुरलियां लिखी थी। जब निकले वहां से कराची से माउंट आबू की तरफ, क्या हुई वो सारे नोट्स वो सारी बातें सब छोड़ के आ गए। तो कहने का भाव है ये जो लाइब्रेरियां जलाई गई, ये ग्रंथालय जो जलाए गए, किताब खाने जो जलाए गए, ये एक कट्टरवाद था उसमें कि यही सत्य है और बाकी सब झूठ है, इसलिए वो जलाए गए। यहां इस ज्ञान में भले हम जानते हैं कि यही सत्य है, बाबा के वचन है एकमात्र सत्य है इस संसार में क्योंकि भगवान आया है कह रहा है, परंतु फिर भी उन किताबों को पकड़ नहीं लेना। सत्य शब्दों से परे है। बाबा जो है और उसने कहा जो है, ये दो बातें हैं। उसने अब तक जो कुछ कहा है भले उसमें संपूर्ण सत्य है, परंतु सत्य फिर भी उससे परे है। सत्य बहुत ऊंचा है। बाबा ने कभी मुरलियों में कहा है मैंने अब तक तुम्हें जो सुनाया है केवल एक बूंद है, केवल एक बूंद। कितनी ही मुरलियां पढ़ ले और कितनी बार रिवाइज कर ले और कितनी क्लासेस करा ले, कितना ही चिंतन करे, फिर भी सत्य बहुत ऊंचा है। सत्य को शब्दों द्वारा, किताबों द्वारा, शास्त्र द्वारा, ग्रंथों द्वारा नहीं जाना जा सकता। सत्य जो है वो आत्मिक स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में ही सत्य का अनुभव होता है, जहां पर शब्द नहीं होते। निःशब्द में सत्य का अनुभव होता है, शब्दों में नहीं। निस्तब्द में सत्य का अनुभव होता है। सारे शब्द जहां खो जाए, ये जो शब्द है, ये जो किताबें है, ये जो बात है, ये केवल उस परम सत्य तक पहुंचाने का एक साधन है, परंतु परम सत्य तक मौन पहुंचाता है। ये सारे शब्द, ये सारी बातें ज्ञान की हमें मौन तक, योग तक पहुंचाती है और फिर वो मौन सत्य तक ले जाएगा। इसके लिए केवल इन बातों, इन शब्दों को नहीं पकड़ लेना बस। बाबा ने जो केवल शब्द कहे हैं, केवल उन शब्दों को नहीं पकड़ना है। आनंद ने कभी महात्मा बुद्ध से पूछा, उसके अंतिम दिनों में, जबकि अब महात्मा बुद्ध अभी जाने ही वाले हैं, 40 साल वो बुद्ध के साथ रहा, उम्र में उससे भी बड़ा था, उसका ही रिश्ते में कोई लगता था। फिर पूछा एक दिन कि क्या आपने हमें संपूर्ण ज्ञान सुना दिया है? तो महात्मा बुद्ध उसे एक जंगल में ले गए जहां पर हजारों झाड़ थे, پتجھڑ کا موسم تھا، بہت سارے پتے نیچے گرے ہوئے تھے، بہت سارے لگے ہوئے بھی تھے جھاڑوں میں. انہوں نے اپنے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں کچھ پتے لیے اور کہا کہ میں نے اب تک تمہیں جو سنایا ہے وگت 40 ورشوں میں، وہ کیول اتنے پتے ہیں. ستیہ جو ہے وہ اس جنگل میں جتنے جھاڑ ہے اور اس میں جتنے پتے ہیں اور جو گرے ہوئے ہیں اتنا ہے. جو میں نے تمہیں سنایا کیول وہ اتنے پتے ہیں بس، مطلب کچھ بھی نہیں، اتنا ہی سنایا ہے. ستیہ اتنا وشال ہے. بابا نے جو گیان سنایا ہے اس کو یدی سمجھنا ہے تو کیول اس نے جو بولا ہے، وہ جو واقعہ ہے، انہیں سمجھ کر نہیں ہوگا، پرنتو جس ستھتی میں بیٹھ کر اس نے سنایا ہے اسی ستھتی میں یدی ہم اسے سنیں تو ہی وہ سمجھے جا سکتے ہیں. سپیکر یہاں بیٹھا ہے، آڈینس یہاں ہے. آڈینس کیا کر رہی ہے؟ کیول اس نے جو سنایا ہے، جو ابھی کتابیں بن گئی ہے اویکتوانی، کیول اس کو پکڑنے کا پریشن کر رہی ہے. پرنتو واستوک ستیہ اویکتوانیوں سے بھی اویکت ہے. اویکتوانی ہی نام ہے اس کا، ارتھات جو ویکت نہیں. شبد تو ویکت ہے، شبد تو ویکت ہے. بابا نے کبھی کچھ لکھ کر نہیں سنایا، بابا جو سنا رہا ہے اسپوکن ہے، وہ کہہ رہا ہے. ابھی ابھی ایک مرلی چلی 8 پیج، ہم یہ ہمارا انومان ہے وہ 8 پیج. اویکت وطن میں کوئی پیجز نہیں ہے، اویکت وطن میں جو وہ سنا رہا ہے وہاں کوئی شبد نہیں ہے، وہاں دھونی نہیں ہے، آواز نہیں ہے، سور نہیں ہے، ساؤنڈ نہیں ہے، وائس نہیں ہے، انہد ہے وہ. وہ تو جو سنا رہا ہے وہ تھوڑا سا 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 16 گھنٹہ آ کر جو وہ بول رہا ہے، کیا وہی ستیہ ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. اگر وہ ایک سال ہی بیٹھ کر سناتے رہے تو کتنے شاستر بن جائے پھر. تو یہ تو 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں جو سنا رہا ہے اسی کو ہم پکڑ رہے ہیں، کیول اس کی ہماری کتابیں بنی ہیں اویکتوانیوں کی. کہنے کا بھاو ایک ہے ستیہ اور دوسرا ہے اس ستیہ کی ابھیویکتی. ابھیویکتی جو ہو رہی ہے وہ شبد دوارا ہو رہی ہے اور اس سے بھی نیچے وہ لکھی جا رہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو کیول اور کیول ان شبدوں کو پکڑ نہیں لینا. ستیہ جو ہے وہ بہت اونچا ہے، بہت برہد، بہت وراٹ ہے. وہ پیاس ہمیشہ رہے کہ ہمیں جاننا ہے، ہمیں سمجھنا ہے. ساکار مرلیا سن سن کر لوگ کہتے ہیں کیا سننا ہے بتا کی ہے، وہی تو باتیں ہیں ساری، وہی تو باتیں ہیں. اور کہا کیا رہا ہے اس میں؟ آتما جب گیان سنتی ہے تو شریر جھومتا ہے. کل کی مرلی سنی نا، ایسا وہ گیان سنے کہ شریر جھومے اور وہ پیاس اور بڑھے. نرنتر یہ بھاو ہو کہ ہم نے کچھ نہیں جانا ہے، ہم نے کچھ بھی جانا نہیں، ابھی تو سمجھنا باقی ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ہم نے نہیں جانا ہے. یہ جو بھاو ہے یہی اس گیان کی بھوک پیاس کو بڑھائے رکھے گا. جیسے ہی ترپتی آ جائے گی کہ ہم نے سب جان لیا تو وہیں سٹاپ ہو جاتا ہے بس. ایک مرلی ہمیں ہوم ورک میں ملی، ہم نے مرلی کا 7 دن ادھیان کیا اور 8ویں دن یہاں سنایا. سنانے کے بعد ایک بھاؤ آتا ہوگا، ہو گیا، کام پورا ہوا، ابھی چلو اپنے جو روٹین کام تھے 7 دن پہلے والے وہ چالو کرتے. یہ جیسے ایک سٹریس کا پیریڈ تھا 4 دن، یہ پورا ہوا کہ ابھی ہم اپنے روٹین میں آگے، جو ہمارے پہلے بھاؤ سبھاؤ سنسکار بول روٹین دن چریا سب کچھ تھا، اس کو ہم ریسٹارٹ ترنت کرتے ہیں. اور ہم نے سوچا کہ کتنا اچھا، کلاس تو بہت اچھا ہوا نو ڈاؤٹ، واہ واہ تو بہت ہوئی، پر فائدہ سب سے زیادہ ہمیں نہیں ہوا، ہوا हुआ था वो 7 दिन हुआ था, काम वो काम था, एक काम काम पूरा करते हैं ना, तो काम पूरा हुआ काम पूरा हुआ भगवत पूरी हुई परंतु ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, जबकि कहते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान ही इतना सूक्ष्म है। सूरज भाई जी ने एक बार सुनाया था, शायद जयपुर या जयपुर से कोई जज आए थे जो कि शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे, ज्ञान सरोवर में आए थे। उन्होंने बात अपने प्रवचन में कही थी, उन्हें कुछ कहने के लिए दिया गया था आधा घंटा किसी प्रवचन, किसी चीफ गेस्ट करके, मुख्य अतिथि करके उनको बुलाया गया था। उन्होंने एक बात कही थी कि शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है और इतनी गूढ़ है, गोपनीय है, यदि किसी को वो समझना है तो उस व्यक्ति को उन ऋषि मुनियों जैसी ही स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, तो ही वो बातें समझी जा सकती है, नहीं तो नहीं। अभी वो व्यक्ति बात कर रहा है शास्त्रों की, यहां बातें चल रही है परम सत्य की। अगर शास्त्रों को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि बाबा भी मुरलियों में कहते हैं, जो ऋषि मुनि थे कैसे थे, सतो प्रधान थे, अभी तो सन्यासी शहर में घुस पड़े हैं, वो सतोगुणी भक्ति थी, सतोगुणी स्टेज थी उनकी, बहुत ऊंची स्टेज थी, जंगलों में रहते थे, मूल कंद फल खाते थे, आजकल की माल माल पानी नहीं, पिज्जा बर्गर नहीं, तंदूरी नहीं, वो मसाले वाले सब्जी नहीं, वो खाते थे, कैसी ऊंची अवस्था होगी उनकी, ब्रह्मचर्य में स्थित रहते थे, शहर के बाहर रहते थे, कोई भी प्रपंच संसार का जो भी संसारिक कारोबार है उससे उनका कोई लेना देना नहीं था, एक ही लक्ष्य था, जीवन का ईश्वर को पाना है, और वो भी द्वापर काल में, और उस समय उनके द्वारा लिखे गए वो शास्त्र थे जो आज है हमारे पास, जो भी खंडित हुए हैं पर थोड़ा तो सत्य है उसमें। तो उनको भी यदि समझना है तो उतनी ऊंची स्थिति चाहिए। ये भगवान जो है ये बैठा है परम धाम में, जहां आवाज ही नहीं है, पहले तो शरीर ही नहीं है, वहां पे कोई देहधारी है ही नहीं, और कौन बैठा है, जो स्वयं भगवान है, वो जो परम सत्य है, और वो इतने 5000 साल के मौन के बाद जब उतरता है धरती पर, तब उसके द्वारा बोले हुए वाक्य है। हमें भी उतना कम से कम 500 दिन तो मौन चाहिए उसको समझने के लिए, 50 दिन, चलो 5 दिन, चलो 5 घंटा कम से कम, ताकि कुछ थोड़ा तो समझ पाए उसके वाक्य को, तो समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। राज विद्या राज गोहम पवित्र मिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्य सुसुखम कर्तव्ययम। गीता में कहा है, हे अर्जुन, राज विद्या राज गुहम, मैं जो तुझे ज्ञान सुनाने वाला हूं वो राज विद्या है, राज गुहम, गुह्य में भी गुह्य है, पवित्र मिदम उत्तमम, पवित्र को भी पवित्र करने वाली वह विद्या है, पवित्र को भी पवित्र करने वाली है, अग्नि को भी पवित्र करने वाला यह ज्ञान है। तत्व है ना अग्नि, अग्नि सारे विश्व को पवित्र करती है, कल की मुरली में था ना, पावन कौन करता है, आग जलाना पड़ेगा, सारे विश्व को आग पावन करती है, यह ज्ञान उस आग को भी पावन करने वाला है, तो कितना ऊंचा ज्ञान होगा। इसके लिए एक पिपासा, एक अभिप्सा, एक भूख, एक अन्वेषण, एक खोज, एक सत्यान्वेषण, हम सभी सत्यान्वेषी है, सीकर आफ्टर ट्रुथ, वो कभी कम ना हो। कभी भी ये मत समझना हमने समझ लिया है, कभी भी ये मत कहना कि ये छोटा सा ही तो वाक्य है, परंतु उस छोटे छोटे साकार मुरलियों में आए हुए साकार मुरली का एक वाक्य क्यों समझना, अर्थात एक अव्यक्तवाणी, अव्यक्तवाणी अर्थात साकार मुरली का एक वाक्य। इसके लिए कई लोग कहते साकार मुरली, अव्यक्तवाणियां बहुत गहरी है, साकार में इतनी कोई गहराई नहीं है, परंतु ये जो है ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। अव्यक्त वाणियों का एक एक हेडिंग जो है वो साकार मुरली का एक एक वाक्य है, मतलब साकार मुरलियों में एक एक लाइन एक एक अव्यक्त वाणी है, कितनी अव्यक्त वाणियां हो गई, फिर वो तो हमारी बुद्धि की खोट है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं क्या है वो सत्य किसी क्लास से भी नहीं सुना जा सकता किसी चिंतन से भी नहीं वो हमें स्वयं अनुभव करना होगा किसी क्लास में सत्य नहीं है किसी किताब में सत्य नहीं है सत्य अनुभूति है उस दिन क्लास में कहा था ना अनुभव और अनुभूति में भी अंतर है अनुभव इंद्रियों का विषय है अनुभूति आत्मा का विषय है अनुभूति को बताया जा सकता है अभिव्यक्त किया जा सकता है क्लास में सुनाया जा सकता है मुझे ये अनुभव हुआ अनुभूति मौन है अनुभूति को कैसे सुनाए वो तो मौन है परम मौन है उसे बताया नहीं जा सकता है जब व्यक्ति परम सत्य को प्राप्त होता है परम सत्य को उपलब्ध होता है मौन हो जाता है एक बार महात्मा बुद्ध और शायद छोटी कहानी होगी महात्मा बुद्ध और महावीर एक ही कमरे में तीन दिन तक थे ऐसा कहा गया है क्योंकि दोनों ही समकालीन थे बुद्ध और महावीर तीन दिन उनके शिष्य में उत्सुकता थी ये दोनों क्या बात करेंगे क्योंकि दोनों के सिद्धांत अलग अलग एकदम अलग अलग जैन धर्म अलग बौद्ध धर्म अलग दोनों के सारे सिद्धांत अलग तो लोगों को लगा इन दोनों में झगड़ा होगा क्योंकि दो अलग मान्यता वाले व्यक्ति हैं वो दोनों ही संपूर्ण मौन रहे तीन दिन तीन रात क्या बात करे बात करने को कुछ है ही नहीं वाद विवाद करना झगड़ा करना मतभेद होना ये तो नीचे की अवस्था है सारी आज अगर मोहम्मद पैगंबर आ जाए महात्मा बुद्ध आ जाए महावीर आ जाए गुरु नानक आ जाए उन चारों में झगड़ा होगा क्या झगड़ा उनमें नहीं है उनके जो फॉलोअर्स है ना नीचे वाले झगड़े उनमें है परम सत्य मौन है जब आत्मा उस परम सत्य को उपलब्ध होती है चुप हो जाती है अब क्या बोले वो अवस्था भी आई नहीं परंतु उस अवस्था तक पहुंचने के लिए शब्दों का आधार लेना है ज्ञान का मनन करना चिंतन करना अध्ययन करना चर्चा करना परिचर्चा करना सब कुछ करना पड़ेगा तब कहीं जाकर पता चलेगा ये शब्द व्यर्थ है धन व्यर्थ है समझने के लिए पहले धन कमाओ भिखारी नहीं कह सकता धन व्यर्थ है पहले भाग दौड़ करना पड़ता है बहुत भागो परेशान हो जाओ फिर पता चलता है कि धन प्राप्त करने का एक ही फायदा है केवल ये अनुभूति की वो व्यर्थ है क्योंकि उसके पहले व्यर्थ ही वो पता ही नहीं चलता है
संत प्रवचन करता है कि धन व्यर्थ है हाँ। लेकिन प्रवचन करने के 5 लाख लेता है
तो कुमार जीवन की जो हमारी यात्रा थी 84 दिनों की आज हम उस यात्रा को पूरा करेंगे एक नई यात्रा मनसा सेवा की कल से आरंभ होगी तो हम केवल अभी ये जो सुशील भाई ने कंपाइल किया है पूरा उसको केवल पढ़ेंगे वैसे तो जैसे कहा कि एक एक वाक्य में सार समाया हुआ है संगम युगी कुमार अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान कुमार अर्थात दिव्य गुणों की मूर्त माला कैसी हो नेकलेस नहीं नीचे पैरों तक नहीं लड़िया वाली नहीं परंतु परिधान बन चुका है ड्रेस बन चुका है सारे ही हीरे केवल सुनहरा नहीं केवल लाल नहीं केवल सफेद नहीं केवल हरा नहीं सारे ही हीरे अपनी पूर्णता में चमक रहे हो ये अंतर जब मिटेगा सोचने का और करने का तब संपन्न बनेंगे तब वापस चलेंगे अभी अंतर है दिव्य गुणों की मूर्त दिव्य गुणों से सजना ये कितना बड़ा लक्ष्य है जीवन का ड्रेस बन जाए कुमार जीवन अर्थात कुमार अर्थात दिव्य गुणों की मूर्त इमेज ऑफ डिवाइन वर्च्यूज कुमार अर्थात मन बुद्धि को सदा स्वच्छ रखने वाले मंदिरों में जिनकी पूजा होती है वो हो, चरणों में जिनके झुकते हैं संडे की मुरली, टीचर से मुलाकात, कुमारी अर्थात जिनकी जिनके चरणों में झुकते चरणों को धोकर पीते हैं, सारा संसार भाव भी नमस्ते करता है, जो चैतन्य में है और उनकी जड़ में, चैतन्य में होते हुए भी इनकी जड़ चित्रों में उन्हीं की आंखों के सामने पूजा हो रही है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 3, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। कुमार अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाले, कुमार अर्थात अवतरित आत्मा, कार्य किया और फिर ऊपर रहने वाले, कुमार अर्थात नो कंप्लेन, कुमार अर्थात सदा कंप्लीट स्थिति में रहने वाले, कुमार अर्थात एक बाप को ही अपने नैनों में बसाने वाले, कुमार अर्थात ज्ञान की हर बिंदु के चात्रक, ज्ञान के हर बिंदु के चात्रक। चात्रक पक्षी होता है, उसे बाकी कोई पानी नहीं चाहिए, मिथक पक्षी है ये, माइथोलॉजिकल है, नहीं है किसी को पता नहीं, माइथोलॉजिकल है, मिथक है, परंतु केवल टकटकी लगाए बैठा है। कुमार अर्थात हार्ड वर्कर, कुमार अर्थात हार्ड वर्कर, ब्रह्मचर्य के लिए हार्ड वर्क की आवश्यकता है, उठे योग किया थोड़ी बहुत सेवा की, उससे ब्रह्मचर्य के लिए हार्ड वर्क की आवश्यकता है, पसीना थोड़ा निकलना चाहिए। रूहानी सेवाधारी सर्विसेबल, सदा स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी अगर होगे तो ही सफलता मूर्त है, तो ही माया जीत है, तो ही भाग्यवान है। संडे की मुरली पार्टी नंबर 2, बाप समान स्वराज्य अधिकारी चरित्रवान, एक भी कर्म साधारण कर्म हो, जैसे बाप के हर कर्म चरित्र है वैसे तुम्हारे भी हर कर्म चरित्र हो। कुमार अर्थात सदा स्वराज्य अधिकारी, बाप के स्नेह में समाये हुए, कुमार अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार स्वरूप में रहने वाले, सदा प्यारे सतोगुणी सनत कुमार, छोटे चार सनत कुमार, सनत सनातन सनंदन और सुनंदन, ऐसे चार सनत कुमार दिखाते हैं शास्त्रों में, उनकी आयु हमेशा ही छोटी रहती है, 5 वर्ष की, उसका भी कारण कुछ और दिखाया है, वो तो शाप दिखाया हुआ है प्रजापति दक्ष का, परंतु शास्त्रों में गायन जरूर है, तो प्यूरिटी का प्रतीक है वो। कुमार अर्थात प्यूरिटी में नंबर 1, वो विष्णु को भी शाप देते थे, भगवान को भी, शास्त्रों में दिखाया है, इसके लिए तो राम बनते हैं नीचे आके। तो प्यूरिटी में नंबर 1 पवित्र, जय विजय की कहानी जो है, तो प्यूरिटी में नंबर 1 पवित्र अवस्था वाले कुमार अर्थात त्याग मूर्त, तपस्या मूर्त, ज्ञान मूर्त, ध्यान मूर्त, कुमार अर्थात चलन व चेहरे से बाप का साक्षात्कार कराने वाले, कुमार अर्थात पवित्रता की लाइट के ताजधारी, कुमार अर्थात एकर स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले, कुमार अर्थात सृष्टि से विकारों का सफाया करने वाले, कुमार अर्थात बेदाग हीरा, ऐसा हीरा जो चमक रहा हो, दूर से ही सारी किरणें एक ही ज्ञान की, ज्ञान के हीरे से सारी किरणें समाये हुए, सारे रंग एक ज्ञान के रंग में समाये हुए, ऐसे ज्ञानवान चमकता हुआ हीरा, फ्लॉलेस, फीलिंग प्रूफ, फीलिंग प्रूफ, फीलिंग देरी नहीं, किसी ने कुछ कहा और रोना चालू, ये नहीं, नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, निर्मोही, न्यारे, उपराम, साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाले, बाप के लिए प्यार से भोजन बनाने वाले, योग की अग्नि सदा प्रज्वलित रखने वाले, डिस्ट्रक्शन समाप्त कंस्ट्रक्शन करने वाले, विघ्नों से पाठ पढ़कर आगे बढ़ने वाले, विघ्नों से पाठ पढ़कर आगे बढ़ने वाले, पाठ पढ़ो, गिराया ना उस विघ्न ने, क्यों गिराया, कैसे गिराया, फिर से स्टडी करो, क्योंकि वही विघ्न फिर आएंगे, बीए का पेपर फिर वापस एमए में आने वाले है, आगे तुम्हारा वाक्य है। सदा राज ऋषि, देहत के वैरागी, संकल्प संबंध संपर्क के बोझ से भी मुक्त रहने वाले, अशांत आत्माओं को शांति देने वाले, भटकती हुई आत्मा को ठिकाना देने वाले, रोग को त्याग, रूहाप को धारण करने वाले, संकल्प और स्वप्न में भी कमजोरी से मुक्त रहने वाले, सदा रूहानी खुशी में झूमने वाले, खुशियों के झूले में झूलने वाले, ऊंचे से ऊंचे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऑक्यूपेशन वाले, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी में रहने वाले, धर्मराज की रॉयल्टी दंड, से मुक्त रहने वाले, अपने जीवन द्वारा आत्माओं को जीवदान देने वाले, मास्टर मुरलीधर बन विकारों रूपी सांपों के विष को समाप्त करने वाले, सदा आत्मिक वृत्ति दृष्टि स्मृति में रहने वाले, कुमार अर्थात सदा मस्तक मणि को देखने वाले, कुमार अर्थात सहनशील, सुशील, कुशील नहीं सुशील, इजी नेचर वाले, कुमार अर्थात माया के किसी भी रूप से धोखा नहीं खाने वाले, कुमार अर्थात अंदर बाहर साफ रहने वाले, और जो अंदर बाहर साफ नहीं है उसको क्या कहा है बाबा ने, खौफनाक, कुमार अर्थात सदा हर कदम में साक्षी और सदा बाप के साथी, कुमार अर्थात संस्कार स्वभाव व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं, शांतिकारी, वो है विनाशकारी, तुम हो शांतिकारी, कल्याणकारी, बाप समान, लाइट हाउस माइट हाउस, ये सारे पॉइंट्स हर दिन लिखे हैं सुशील भाई ने, जो यहाँ मुरली चली है थोड़े थोड़े रोज के, तो ये सारी जो है उसका जो किताब है उसका ये सार है। तो कुमार अर्थात सर्वशक्तियों की किरणें फैलाने वाले, एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाले, आलस से अलगलेपन से मुक्त रहने वाले, बाप दादा की उम्मीदों को पूरा करने वाले, दृढ़ संकल्प से विश्व को बदलने वाले, लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करने वाले, सर्वशक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ कंबाइन रहने वाले, सब झंझटों से परे बेफिक्र बादशाह, सब प्रकार के बोझ से मुक्त, समर्थ संकल्प समर्थ बोल समर्थ कर्म करने वाले, समय के महत्व को जानने वाले, पवित्र बनने बनाने वाले, महान आत्माएं वरदानी स्वरूप बाप समान, शुभ भावना शुभ कामनाएं वाले, विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, सदा अचल अडोल और औरों को भी अचल अडोल बनाने वाले, बाप दादा के साथ के साथी, सदा के साथी औरों को भी बाप का साथी बनाने वाले, मस्ती नहीं करने वाले, कुमार अर्थात मस्ती नहीं करने वाले, चलन बोलचाल उसमें उदाहरण मूर्त, कुमार अर्थात हर्षित, सदा हर्षित रहकर औरों को भी हर्षित करने वाले, निस्फूर नहीं, कोई फूरना नहीं, चिंता नहीं, निश्चिंत उर्ति कला वाले, कुमार वाह वाह जीवन, वाह भाग्य, वाह ड्रामा, वाह बाबा की गीत गाने वाले, कुमार अर्थात सालिम अखंड विशाल स्वच्छ बुद्धि वाले, सदा विश्व कल्याण के कार्यों में बिजी रहने वाले, संकल्प व स्वप्न में भी कल्याण की भावना वाले, सदा तीव्र पुरुषार्थी हर कदम कमाई करने वाले, सदा ओके वेरी गुड और निर्विघ्न, कैसे हो ओके निर्विघ्न और वेरी गुड, कुमार असंभव को संभव करने वाले, अपने जीन्स को संदोष से मुक्त कर बाप के संग में लाने वाले, वरदानों से झोली सदा भरपूर रखने वाले, पवित्र देव पवित्र दृष्टि वाले, सदा एक नामी इकोनॉमी वाले, सहनशीलता का देवता निरंतर प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले, कुमार अर्थात जो बाप के संस्कार वही कुमारों कुमार के संस्कार, जो बाप के संस्कार वही कुमारों के संस्कार, बाप भी क्या है कुमार है या नहीं है, बाप भी कुमार है ना, कुमुद बहन बाप कुमार है ना, शिव कुमार आप भी कुमार बाप भी कुमार बाहों में बाहर डाले मस्ती से झूमने हुए चलो कुमार अर्थात सदा पवित्र जन्म की मर्यादा में रहने वाले और अंतिम कुमार अर्थात आत्मिक बम लगाने वाले, क्या करने वाले आत्मिक बम लगाओ और ऐसा विस्फोट करो संसार में कि सारे न्यूज चैनल में पहली ब्रेकिंग न्यूज हो जाए, हमला वो है आतंकी हमला, यह है आध्यात्मिक हमला, क्रांतिकारियों का हमला, आध्यात्मिक क्रांतिकारियों द्वारा फला फला जगह पर अमृत वेले सुबह सुबह हमला हुआ, जबरदस्त ऐसा हमला करो, ऐसा बॉम्ब ऐसा विस्फोट हो, ऐसा आत्मिक बॉम्ब का विस्फोट हो कि कुंभकर्ण की नींद में सोने वाली संसार की सारी आत्माएं एक साथ जागे, कौन है क्या है सारे न्यूज चैनल पर चर्चा करे, अर्णब गोस्वामी परेशान हो जाए ये क्या हुआ, ओम शांति।